जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जाना वाला भिवा मैं तो 9 बजे जा रहा हूँ। गोपी जाना वाला भिवा धारी, मैं 9 बजे जा रहा हूँ, लोगों को जा। जय राधा जब बिहारे, जय राधा धव जब बिहारे। सोदानंदन ब्रज जन रंजन, सोदानंदन ब्रज जन रंजन।
हरि बोल हरि बोल।
जमुना तीरा पन छे, जमुना तीरा पन छे, जय राधा माधव जब बिहारे, जय राधा माधव जब बिहारे। गोपी जाना वाला भाला धारे, गोपी जाना वाला भाला धारे। सोदानंदन ब्रज जन रंजन, सोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बन छे, जमुना तीरा पन्नचारे। जय राधा माधव जब बिहारे, जय राधा माधव जब बिहारे। गोपी जाना वाला भिवा धारी, गोपी जाना वाला भिवा धारी। सोदानंदन ब्रज जन रंजन, सोदानंदन ब्रज जन रंजन।
जमुना तीरा बन चारे धैरा दमा धावा जब बिहारे गोपी जाना बाना बाला धान गोपी जाना बाना बाला धान सोदा नाम दन्ना ब्रज जाना राम जाना जमुना तीरा बन चारे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवाशदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवाशदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय राधा पार्वती राधा सरस्वती राधे हरि भा हरि भा हरे बा हरे बा हरे बा हरे बा हरे बा हरे बा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तोमा बिना के दया जगता संसारे तोमा बिना के दया जगता संसारे पतित पावना हे तु तवावतारा
हाय बो
पतित पावना हे तु तवावतारा भो समापतिता प्रभु ना पैबे आना भो समापतिता प्रभु ना पैबे आना हा प्रभु नित्यानन्द प्रेमानन्द सुखे हा प्रभु नित्यानन्द प्रेमानन्द सुखे कृपा करो काना करे हमें बड़ दुखे कृपा करो काना करे हमें बड़ दुखे दया करो सीता पाति अद्वैता गसाए दया करो सीता पाति अद्वैता गसाए तावा कृपा पाले पाए चैतन्य निताए तावा कृपा पाले पाए चैतन्य निताए
स्वरूपतम रूप रघुनाथ हा स्वरूपतम रूप रघुनाथ भाता योग जीव प्रभो लोकनाथ भाता योग जीव प्रभो लोकनाथ जया करो श्री आचार्य प्रभो श्रीनिवास रामचंद्र संगमे नरोत्तम दास हरि बा 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 Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Jivanga Shabaita Bhaktiranda Swami Shri Prabhupada Maharaj Ki Jai Om Vishnu Jivanga Shabaktiranda Saraswati Goswami Prabhupada Maharaj Ki Ananta Koti Vaishnava Binda Ki Viskan Fonda Charya Shri Prabhupada Ki Nama Charya Shri Haridasa Thakur Ki Prem Sakohu Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shri Gaur Bhakta Binda Ki श्री श्री राधा कृष्ण गोपी नशांत राधा गिरि गोधाम की मुंदावत धाम की मायापुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की सम वेद भक्त गो प्रेमानंद ऑल ग्लोरी श्री समुद्र बोडीज ऑल ग्लोरी समुद्र बोडीज ऑल ग्लोरी श्री समुद्र बोडीज ऑल ग्लोरी श्री गुरु श्री गंगा विद्रो प्रिया Lalurana. You have Lalurana's number? Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Har somvar ko yahan Chaitanya Charitamrita ki class hoti hai. Isliye humne ye bhajan gaya tha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karunamale. Aaj kai atithi bhi aaye hain. Aap sab kahan Rajasthan se ho? Ha? Kahan? गुजरात राजकोट अच्छा पहली बार आ रहे हो यहाँ तो आप सबका हार्दिक स्वागत हमें सब भक्तों का स्वागत करना चाहिए आप लोग यात्रा कर रहे हो बस में अच्छा acha hai. We should take care of all these devotees when they come. Aap Gujarat mein gaye ho, ISKCON ke kisi kendra mein, Rajkot mein bhi ISKCON ka mandir hai. Wahan jaate ho aap log? तो जैसे मैं कह रहा था, हर सोमवार को हम चैतन्य चरितमृता से पढ़ते हैं और आज है, क्या लिखा है बोर्ड में, जानू सप्तमी. तो इस विषय में इज समबडी ट्रांसलेटिंग फॉर योर रशियन डिवोटीज. ओके, तो आज वो दिन है जबकि थाईस को क्या बोलते हैं हिंदी में, जंगा कि जान जानू मुनि की झंगे से उन्होंने गंगा छोड़ी थी. आप लोग जब नवद्वीप परिक्रमा करते हो तो आप उस स्थान में जाते हो जहाँ की महाराज जानू ने बड़ी गहरी तपस्या की थी और महाराज जानू मून गॉड, चंद्रमा के देवता की परंपरा में आ रहे हैं. तो गए थे नवद्वीप में तपस्या करने के लिए और महाराज दशरथ भागीरथ ने बहुत गहरी तपस्या की थी और गंगा को ला रहे थे इस पृथ्वी पर. अपने 60,000 एंसेस्टर्स उनके मरे थे तो गंगा को ला रहे थे. महाराज भागीरथ रथ में जा रहे थे आगे और गंगा उनके पीछे आ रही थी और गंगा इतनी तेजी से आ रही थी कि हालांकि महाराज जानू वहां तपस्या कर रहे थे उसने परवाह नहीं की. तो उनकी कुटिया लोटा और उनके वो बिल्कुल चिंतन कर रहे थे बड़ी गहराई के साथ, उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया. तो महाराज जानू जब क्रोधित हुए तो उन्होंने पूरे गंगा नदी को लेकर पहले हाथ में लिया फिर अपने पूरे नदी को पी लिया. तो भागीरथ ने देखा पीछे मुड़कर गंगा नदी उनके पीछे नहीं आ रही. तो वो सोचने लगे क्या हो गया, मैंने इतनी गहरी तपस्या की थी जिसके द्वारा गंगा नदी को उन्होंने आकर्षित किया था. फिर उन्हें पता लगा कि ये गंगा है को पी लिया है महाराज जानू ने. फिर उन्होंने महाराज जानू को प्रसन्न किया और फिर महाराज जानू ने अपने झंगे से आज के दिन इस गंगा को छोड़ा. तो आज है जानू सप्तमी. महाराज जानू की कौन सा श्लोक है आज? मैं अभी गला बैठने लगे फेस्टिवल में कहा भी कीर्तन के लग जाओ मेरा गला बैठ रहा है. हाँ, आप में से कौन कौन आए थे ये उत्सव फेस्टिवल में? अच्छा, काफी लोग नहीं आए थे शायद. ये अच्छा उत्सव था, इस प्रकार के ज्यादा उत्सव करेंगे. और लगभग कितने 500-600 डिवोटी आए थे. श्लोक 105 लिखा है, तुम्हारा प्रभाव है सबारा आनंदित माना काभू असंगता ना है तुम्हारा वचन तुम्हारा प्रभाव है सबारा आनंदित माना काबू असंगत नहीं तुम्हारा बचाना तुम्हारा प्रभाव सबार आनंदित माना काबू असंगत नहीं तुम्हारा बचाना. हिंदी मैं गला बैठ गया. भक्ति के धार में बोल
दिया।
Master Ji's Vidura Priya.
अनुवाद है, मेरे पीछे बोलिए सब लोग। महोदय, आपके प्रभाव से हमारे मन अत्यधिक प्रसन्न है और हमें विश्वास है कि आपके वचन अनुपयुक्त नहीं होंगे। अतएव आप वेदांत सूत्र के विषय में कहें। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक में तोमार प्रभावी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई अध्यात्म में पटु नहीं होता, वह श्रोताओं को प्रभावित नहीं कर पाता। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। जब तक शुद्ध भक्त की संगति नहीं की जाती, तब तक किसी को भक्ति नहीं समझाई जा सकती। ये मायावादी सन्यासी भाग्यवान थे कि इन्हें भक्त के रूप में भगवान से भेंट हुई और वे भगवान से अत्यधिक प्रभावित भी हुए। वे जानते थे कि उच्च अध्यात्मवादी कभी कोई झूठी बात नहीं कहता, उसके शब्द उपयुक्त होते हैं और वेदों से मेल खाते हैं। अत्यधिक प्रकाश प्राप्त व्यक्ति कभी ऐसी कोई बात नहीं कहता जो सार्थक ना हो। मायावादी दार्शनिक अपने को भगवान होने का दावा करते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कभी निरर्थक बातें नहीं की। मायावादी सन्यासी उनके व्यक्तित्व के प्रति आश्वस्त थे, अतः वे उनसे वेदांत दर्शन का सारांश सुनना चाहते थे।
तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविस्तम् स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदामयम् ददाति स्वपदन्तिका। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमल श्रीगुरुन् वैष्णवंसं श्रीरूपं सगराजतं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं। हे कृष्णा
कृष्णा
Jai Shri, give me a handkerchief. Hare. Tamara prabhave sabara nanditamana kabu sangat nahi tumara vachana. तो एक बार फिर से मैं उन भक्तों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने ये बड़े सुंदर फेस्टिवल का प्रबंध किया था. क्या था फेस्टिवल का नाम? साधना कैंप. अच्छा उत्सव था. लगभग 600 भक्त आए थे और ये असल में पहला फेस्टिवल था इस प्रकार का दिल्ली मंदिर के भक्तों की तरफ से, है कि नहीं? आपको कैसे लगा प्रबंध कैसे? और अच्छा था. 600 भक्तों के साथ दो दिन लगातार श्रवणम कीर्तनम. तो अभी हमारा प्रयास रहेगा कि हर तीसरे चौथे महीने ऐसा एक कैंप करेंगे किधर न किधर उत्तर भारत में. तो ये श्लोक का उच्चारण कौन कर रहे हैं? मायावादी सन्यासी. जैसे आपको कहा था हर सोमवार को हम चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं. एक रूप से आप लोग शायद भूल जाते हो गए, हर हफ्ते में एक बार ही पढ़ते हैं. तो इस समय आप पढ़ रहे हो आदि लीला का 7वां अध्याय और चैतन्य महाप्रभु जी वाराणसी पहुंचे थे. आप सब चैतन्य महाप्रभु जी से परिचित हो, गुजरात से जो आए हो? हाँ, जानते हो चैतन्य महाप्रभु? और शुड वी हैव अ सेपरेट क्लास इन गुजराती? हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं और वो प्रकट होते किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए. तो चैतन्य महाप्रभु जी वाराणसी में आए थे. उनके भक्त जो थे चंद्रशेखर तपन मिश्रा, वो सुन रहे थे बार बार मायावादी सन्यासी महाप्रभु जी की निंदा कर रहे हैं, आलोचना. क्यों? क्योंकि वैसे तो चैतन्य महाप्रभु छोटी सी आयु में ही प्रसिद्ध संस्कृत के पंडित बन गए थे, इसलिए उनके अनेक नामों में एक नाम था निमाई पंडित. पर यहां उन्होंने देखा कि वेदांत सूत्र का अध्ययन करने के बजाय वो क्या कर रहे हैं? हरे नाम संकीर्तन कर रहे हैं. तो तपन मिश्र चंद्रशेखर ने कहा कि हम सह नहीं सकते कि आपकी इतनी बेइज्जती ये कर रहे हैं. उन्हें तो पता था कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं. तो उन्होंने उन्हें कहा कि आप चलिए उन्हें मिलने के लिए. तो महाप्रभु जी गए उस सभा में जहां की हजारों मायावादी सन्यासियों की सभा चल रही थी. और महाप्रभु जी ने बड़ी नम्रता के साथ वो जाकर बैठे कहां? जहां की आप लोग पैर धोते हैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले. और दूसरे मायावादी कहां बैठे थे? ऊंचे मंच पर. पर महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं. आज के वातावरण में अनेक व्यक्ति दावा करते हैं वो भगवान हैं, पर जब उनसे पूछा जाए कि आप कोई दिव्य लीला प्रकट कर सकते हो तो प्रकट कर पाते हैं? नहीं. पर महाप्रभु जी ने यहां एक और दिव्य लीला प्रकट की. उनके चेहरे से इतना तेज और रोशनी निकली जैसे कि करोड़ों सूर्य एक साथ हो. तो जब ये मायावादी सन्यासी ने देखा तो समझ पाए कि ये सन्यासी कोई साधारण सन्यासी नहीं है. वो प्रकाशानंद सारस्वती आकर महाप्रभु जी को खींच कर ले गए मंच पर, मंच में बिठाने के लिए. तो मायावादी और वहां प्रभु जी का वार्तालाप आरंभ हुआ। तो मायावती सन्यासी ने कहा कि हमने आपकी इतनी प्रशंसा सुनी है, आप वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते। और महाप्रभु जी ने क्या कहा, महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे गुरु ने देखा था कि मेरे में इतनी योग्यता नहीं है, उन्होंने क्या कहा, मैं मूर्ख हूं, और हमें और मुझे कहा कि तुम्हें हरि नाम का ही उच्चारण करो, इसी में वेदांत सूत्र का सार प्राप्त होता है। वेदांत सूत्र का सार क्या है, परम भगवान के शरणागत होना। और वेदांत सूत्र की असली कमेंट्री क्या है, कहां है, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी कहते हैं इज ए परफेक्ट कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र। अगर आप वेदांत सूत्र को समझना चाहते हो तो हमें क्या, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। हम लोग भागवतम का अध्ययन करते हैं तो उसके द्वारा वेदांत सूत्र का जो असली उपदेश है वो समझ पाते हैं। और श्रीमद् भागवतम का निर्णय क्या है, निर्णय यह है कि भक्ति योग एक माध्यम है जिसके द्वारा आप परम भगवान को आकर्षित कर सकते हो। और भक्ति योग इस कलयुग में आरंभ होता है किस माध्यम से, भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा। तो इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु जी ने कई प्रसिद्ध श्लोकों का उपयोग किया है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नस्तेव 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 वगतिर अन्यथा, ये स्थापित करने के लिए कि हरि नाम ही सबसे महत्वपूर्ण सेवा है और हरि नाम के माध्यम से ही आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। तो मायावादी जो निर्विशेषवादी सन्यासी थे, मायावादी सन्यासियों ने महाप्रभु जी का उपदेश सुना, हरि नाम की महिमा के विषय में सुना, और ये सुनकर उनके हृदय में भी जरा निम्रता बढ़ी। और फिर आगे मायावती सन्यासी कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा पिछले श्लोक में कि हम आपके शब्दों से बड़े प्रभावित हैं, पर हमें यह समझ नहीं आता आप वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते। और जैसे आगे कह रहे हैं, हम आपके वचनों से बड़े प्रसन्न हैं, पर आप अभी वेदांत सूत्र पर क्यों नहीं बोलते। इसी प्रकार का वार्तालाप हुआ था महाप्रभु जी का सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ। सर्वभौम भट्टाचार्य को बृहस्पति का अवतार माना जाता है, और जब आप नवद्वीप परिक्रमा में जाते हो तो आप उस स्थान में भी जाते हो जहाँ की सर्वभौम भट्टाचार्य ने शिक्षा दी थी। तो सर्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु जी मिले थे कहाँ, जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु जी संन्यास लेकर आगे आ रहे थे जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए, नित्यानंद जी और दूसरों को पीछे छोड़ दिया था उन्होंने। और जगन्नाथ जी का दर्शन लेते ही जगह 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 कहते ही वो बेहोश हो गए। पुजारी ने दरवाजा बंद करना था भगवान को भोग लगाने के लिए, पर पुजारी ने देखा ये खूबसूरत सन्यासी बिल्कुल आगे बेहोश पड़ा है, तो पुजारी समझ नहीं पाए क्या करना चाहिए। तो सर्वभौम भट्टाचार्य वहां खड़े थे, उन्होंने कहा कि इस सन्यासी को उठाकर मेरे घर में ले जाओ। सर्वभौम भट्टाचार्य का घर जगन्नाथपुरी मंदिर से दूर नहीं है, 5 मिनट के रास्ते पर। अगर आप गए हो दर्शन के लिए तो आपने देखा होगा 5 मिनट की दूरी पर ही है सर्वभौम भट्टाचार्य का घर। तो वहां ले गए, थोड़ी देर बाद नित्यानंद जी आए, और नित्यानंद जी उन्होंने सुना कि कई लोग चर्चा कर रहे थे कि एक बहुत खूबसूरत सन्यासी आया था और वो खूबसूरत सन्यासी को उठाकर बेहोश हो गया, देखते ही उठाकर ले गए। कहाँ ले गए, सर्वोवर चौधरी के घर। तो वहाँ नित्यानंद जी वहाँ पहुँचे, उन्हें पता था वहाँ प्रभु जी होश में कैसे आएंगे। और जब सर्वोवर आचार्य ने देखा तो ये घटना देखो आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने कीर्तन किया और होश में आ गए। फिर सरोवर आचार्य को चिंता थी कहीं ये खूबसूरत सन्यासी पर माया का प्रभाव नहीं आ जाए। उनके रिश्तेदार थे जिनका नाम था गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य को बिना शंका के पता था कि ये चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, और कई बार वो कहते थे सर्वोपरि आचार्य से भगवान हैं, पर सर्वोपरि आचार्य कहते थे नहीं नहीं, ये मैं मानता हूं कि ये प्रसिद्ध सन्यासी हैं पर ये भगवान नहीं हो सकते। तो खैर 8 दिन के लिए सर्वोपरि आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु जी को वेदांत सूत्र सुनाया और साथ में श्लोकों के उच्चारण के साथ अपना भावार्थ भी दिया। पर महाप्रभु ने एक प्रश्न नहीं पूछा और 8 दिन के पश्चात फिर सर्वोपरि आचार्य ने पूछा कि आपको क्या समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो महाप्रभु ने कहा हां समझ तो आ रहा है, पर आपने वेदांत सूत्र का जो असली भाव है अर्थ है उसको आपने छुपा दिया है, ढक दिया है, जैसे बादल ढक देता सूर्य को आपने ढक दिया है। और फिर महाप्रभु ने कहा कि जो वेदांत सूत्र का जो असली संदेश है बिल्कुल साफ है, उसे समझना कठिन नहीं, पर आपने अपने निर्विशेषवादी विचारों को जोड़कर अति संदेश को बदल दिया है। और फिर आगे महाप्रभु ने आत्मनाम श्लोक के विषय की चर्चा की और सर्वोपरि आचार्य ने उस श्लोक सुनाया 16 अलग तरीकों से, पर महाप्रभु ने उसे सुनाया उसके अर्थ को उसकी व्याख्या दी 64 अलग तरीकों से। फिर सर्वोपरि आचार्य स्वीकार करे, क्या उन्होंने स्वीकार किया कि आप स्वयं भगवान हो। तो जो मायावादी हैं ये शंकराचार्य की व्याख्या को पढ़ते हैं शरीर का भाष्य, जिसमें क्या स्थापित किया जाता है, तुम भगवान हम भगवान। प्रभुपाद इसमें कहते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कि नारायण के 4 हाथ हैं, पर जो मायावादी सन्यासी हैं वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, ओम नारायण, उनके क्या हैं, 2 हाथ हैं, 4 हाथ नहीं हैं। फिर कईयों का यह सिद्धांत रहता है गरीबों की सेवा करो यह नारायण की सेवा है, इसको क्या कहते हैं, दरिद्र नारायण। तो प्रभुपाद जी कहते थे इस विषय में कौन कहता है नारायण दरिद्र है, नारायण तो सबसे धनी है, ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य। तो यहां जो मायावादी सन्यासी हैं वो कह रहे हैं कि हम बड़े प्रसन्न हैं आपके शब्दों से। इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु जी ने अनेक श्लोकों के द्वारा ये स्थापित किया है क्या कि हरि नाम एक साधन है जिसके द्वारा अपरम भगवान को आकर्षित कर सकते हो। और ये जो हरि नाम हरि नाम हरि नाम प्रसिद्ध श्लोक है इसमें 3 बार स्थापित किया जा रहा है क्या कि हरि नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कले दोषे निराजन एक अस्थि का महागुना कृष्ण ने व कृष्ण से मुक्त संघर्ष परम जन, कि कलियुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलियुग में, वो ये है क्या, वो ये है कि हरि नाम के उच्चारण से अब जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्लोक में तुम्हारा प्रभाव है बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है आपके प्रभाव से। और इस विषय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, जब तक कोई अध्यात्म में पटु नहीं होता तो श्रोताओं को प्रभावित नहीं कर सकता। इस विषय में एक चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, कृष्णा शक्ति बिना नाहे ताला प्रवर्तन। कृष्णा की शक्ति के बिना कोई किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे कि प्रभुपाद जी गए सारे विश्व में, उन्होंने कृष्णा भक्ति की स्थापना की, चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को पूरा किया। पर कई थे, कई नहीं, एक दो गुरु भाई थे जो कहने लगे, क्या स्वामी जी ने किया, अमेरिका गए मलच्छों को बना दिया बराबर, हम भी जाते तो कर देते बड़ी आसानी से, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बड़ी बात तो नहीं, पर कृष्णा शक्ति बिना कोई ये नहीं कर सकता। भक्ति सिद्धांता जी ने भी अपने शिष्यों को भेजा था पश्चिम देशों में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आचे जाता नगर आदि गांव, पृथ्वी में जितने नगर हैं गांव हैं सब जगह क्या होगा, ये हरि नाम का उच्चारण। तो हालांकि 400 साल बीत गए थे, और जो वैष्णवाचार्य हैं कई वैष्णव भक्त, वो भी सोच रहे थे कि ये चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी अब सत्य नहीं निकलेगी। महाप्रभु जी ने भविष्यवाणी दी थी कब, 520 साल पूर्व, और 400 से अधिक साल बीत गए थे और हरि नाम केवल भारत के बाहर नहीं पहुंचा था। जब भक्ति सिद्धांता जी प्रभुपाद जी को मिले 1922 में, पहली मुलाकात में ही उन्होंने क्या आदेश दिया, उन्होंने कहा आप पढ़े लिखे हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। तो भक्ति सिद्धांत जी ने भी 2 या 3 सन्यासियों को भेजा था जर्मनी इंग्लैंड कृष्ण भक्ति की स्थापना के लिए, पर वो नहीं कर पाए और वापस लौट गए। एक समय जब भक्ति सिद्धांत जी अपने शिष्य को भेजा था इंग्लैंड, तो वहां एक लॉर्ड उसने कहा उनसे, आप मुझे क्या ब्राह्मण बना सकते हो? तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई ने कहा हाँ ब्राह्मण बना सकते हैं, और ब्राह्मण बनने के लिए एक आपको ये नियम 4 चीजों पाप के कार्यों को त्यागना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा फिर हमें ब्राह्मण मत बनाओ, हम इनके बगैर नहीं रह सकते, हम ब्राह्मण नहीं बनना चाहते। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं हो, अगर जब तक कोई व्यक्ति भक्ति में खुद आत्मज्ञानी नहीं हो, वो दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता। तो मतलब दूसरे शब्दों में परम भगवान स्वयं प्रकट होते हैं या अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं भगवान की शिक्षा की स्थापना के लिए। और जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कृष्णा शक्ति बिना नहे तारा प्रवर्ताना, कृष्णा की कृपा शक्ति के बिना कोई भगवान का प्रचार नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी पर खास कृपा थी, और वो प्रभुपाद जी जन्म लिया था किस लिए, चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। तो यहां बड़े स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जब तक कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो, जब तक कोई दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता। तो आप अगला प्रश्न यह होगा आपका, कृष्ण की कृपा किस आधार पर प्राप्त होती है? कोई लॉटरी टिकट निकलती है, हाँ इसका नंबर मिल गया तो अभी इसको कृपा प्राप्त होगी, जैसे लॉटरी के वो लॉटरी जीतने वालों को चुनते हैं। ये कृष्णा की कृपा प्राप्त होती है किस आधार पर? पवित्रता के आधार पर। जितनी पवित्रता से हम भक्ति करेंगे, जितनी नम्रता से आप भक्ति की विधियों का पालन करोगे, उसी के आधार पर आपको कृष्णा की कृपा प्राप्त होगी। ये नहीं सोचना चाहिए उस व्यक्ति को खास कृपा प्राप्त हुई है, मुझे खास कृपा प्राप्त नहीं हुई है। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं ठाकुर भक्तिनाथ जी के एक रचना का उपयोग करते हुए शुदा भक्त चरणा रेणु भजना अनुकूला। शुद्ध भक्त की संगत के द्वारा ही आपको भक्ति योग की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो यहां कहा जा रहा है क्या, शुद्ध भक्त की संगत के द्वारा ही भक्ति योग की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो दूसरे शब्दों में यहां कहा जा रहा है कि अगर आप भक्ति योग के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो किस चीज की आवश्यकता है, शुद्ध भक्त की संगत की आवश्यकता है। इस विषय में चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि आया। तो शुद्ध भक्त की संगत अगर आपको एक पल एक क्षण के लिए भी प्राप्त हो जाए तो उसके द्वारा क्या प्राप्त क्या लाभ होता है, आपको भक्ति का बीज प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों पर में इस विषय का बल दिया गया क्या, साधु संगत का लाभ उठाओ। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने कुर्मा ब्राह्मण को आदेश दिया, कुर्मा ब्राह्मण की इच्छा थी कि घर छोड़कर महाप्रभु जी के साथ यात्रा करें, पर चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं, जहां वहीं रहो, पर नियमों का पालन करो। और चैतन्य महाप्रभु जी ने 5 महत्वपूर्ण विषयों का पर बल दिया था, जिनमें से एक था साधु संगत। पहला था हरि नाम का उच्चारण, दूसरा था भागवतम गीता का अध्ययन, तीसरा था भगवान के आर्च्य विग्रह की सेवा, चौथा था साधु संगत। तो अगर हम भक्ति योग की महिमा समझना चाहते हैं और अगर हम भक्ति योग में रहना चाहते हैं, साधु संगत की आवश्यकता है। और साधु की क्या पहचान, साधु की पहचान के विषय में भागवतम के 3rd स्कंद में साधु के गुणों का वर्णन है। भगवान कपिला देव जी क्या कहते हैं, तितिक्षवा करुणिका सूरदा सर्वदहीनम अजत शतव संत साधु साधु भूषण। रूप गोस्वामी जी हमें उपदेश देते हैं कि हमें आदर हर साधु को करना चाहिए, पर हमें सेवा उनकी करो जो तन मन से शरणगत हैं भगवान की सेवा में। इस विषय का वर्णन रूप गोस्वामी जी करते हैं श्री उपदेशमृत नाम के ग्रंथ में। अनेक प्रकार के साधु हैं, नारद मुनि जी भागवतम के 4th स्कंद में कहते हैं कि हम 3 अलग प्रकार की संगत प्राप्त कर सकते हैं। एक है संगत जो कि आपसे ज्यादा एडवांस है भक्ति में, दूसरा है जो कि आपके बराबर के हैं, और तीसरा है जो कि आपसे कम एडवांस है। तो नारद मुनि जी हमें उपदेश देते हैं कि हमें किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए ये 3 प्रकार के व्यक्तियों के साथ। नारद मुनि जी कहते हैं कि जब आपका सौभाग्य हो कि आप आपसे एडवांस भक्ति संगत प्राप्त करते हो तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए और सेवा करनी चाहिए और पूछना चाहिए ऐसे संत से कि हमें क्या त्यागना चाहिए भगवान के शरणगत होने के लिए। जब आप अपने बराबर के भक्त को मिलो तो उसे क्या करो, कृष्ण कथा। परसों हम आपको उपदेश दे रहे थे, नारद मुनि नहीं भगवान कृष्ण 11वें स्कंद का श्लोक सुना रहे थे परसों कैंप में, जहां की भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया किस प्रकार सेवक या शिष्य का व्यवहार होना चाहिए। और अनेक बातों में एक महत्वपूर्ण उपदेश क्या था, किसी भी हालत से प्रजल्पा से बचना, किसी भी हालत से कृष्ण प्रजल्पा से बचना। तो जब हम मिलते हैं दूसरे भक्तों को तो हमारा भाव क्या होना चाहिए, उनके साथ बैठकर हम क्या करें, कृष्णा कथा करोगे तो जो कृष्णा कथा सुनाएगा उसको भी इसका लाभ मिलेगा और जो सुनेगा उसे भी इसका लाभ मिलेगा। और जब आपकी संगत हो उनके साथ जो आपसे कम एडवांस्ड है, जो आध्यात्मिक श्रेणी में आपसे पीछे हैं, तो उनके प्रति किस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए, उन दया, उनके प्रति दया की भावना प्रकट करनी चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए क्या उन्हें हम दिव्य ज्ञान दें। तो नारद मुनि जी ने कहा है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए अलग अलग प्रकार की संगत में। और यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ठाकुर भक्तों जी के एक श्लोक का उपयोग करते हुए कि जब तक हमें शुद्ध भक्त की संगत नहीं मिले, जब तक आप भक्ति योग की महिमा को नहीं समझ सकोगे। इसलिए भक्तों की संगत पर इतना बल दिया जाता है, और अगर हम भक्ति के मार्ग में जुड़े रहना चाहते हैं तो भी भक्तों के संग में हमें रहना चाहिए, और भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्तों की सेवा में जुड़ना चाहिए, और भक्तों के संग रहकर हमें भगवान की सेवा में जुड़े रहना चाहिए। आप भागवत में पढ़ते हो, चैतन्य चैतन्य में पढ़ते हो, किस प्रकार मृगारी कौन था, शिकारी, बहुत बड़ा छोटा भी नहीं, जैसे जानवरों को घायल करके बड़ा आनंद अनुभव करता था, उस शिकारी का भी उद्धार कैसे हुआ, नारद मुनि जी की संगत के द्वारा। महाराज रहुगना का उद्धार कैसे हुआ, जद भारत की संगत के द्वारा। तो साधु संगत की आवश्यकता है। नारद मुनि जी से पूछा गया था कि आपने इतना ऊंचा जन्म कैसे प्राप्त किया, और नारद मुनि जी ने क्या कहा कि किस प्रकार पूर्व जन्म में उनकी माता संतों के घर में सेवा कर रही थी, और किस प्रकार उनका सौभाग्य था कि संतों द्वारा प्रसाद उन्हें प्राप्त होता था और उनकी संगत प्राप्त होती थी। तो यहां कहा गया है साधु संगत, और आप देखोगे इस कथा में आप पढ़ रहे हो कि चैतन्य महाप्रभु जी प्रकाशानंद सारस्वती और उनके 10,000 शिष्यों के संगत में बैठे हैं, और चैतन्य महाप्रभु की संगत का क्या प्रभाव हुआ कि सारे मायावादी क्या बन गए, वैष्णव बन गए। चैतन्य महाप्रभु जी ने सारे मायावादियों को प्रभावित करके ऊंचे कोटि के वैष्णव बना दिया। जब चैतन्य महाप्रभु जी पृथ्वी पर थे, उन्होंने मायावादी हर प्रकार के व्यक्ति को वैष्णव सिद्धांत के प्रति आकर्षित किया। जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो दूर दूर से लोग आते थे उनका दर्शन लेने के लिए, और उनके दर्शन लेते ही प्रभावित हो जाते थे, हरे नाम का जाप शुरू कर देते थे, और फिर जब वो लौटते थे अपने स्थानों में, अपने शहर गांव में, तो दूसरे व्यक्ति उनको देखकर वो भी प्रभावित हो जाते थे और हरे नाम का उच्चारण शुरू कर देते थे। इसी प्रकार महाप्रभु जी ने मायावादियों को, मुसलमानों को, बुद्धिस्ट को, सबको प्रभावित किया, किसके प्रति, हरि नाम के प्रति। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए भक्तों की संगत में रहने के लिए, और खास करके अगर आपको शुद्ध भक्त की संगत लाभ मात्र का अर्थ है एक सेकेंड का 14वां हिस्सा, अगर आपको एक सेकेंड के 14वें हिस्से के लिए भी किसी शुद्ध भक्त की संगत प्राप्त हो तो उसका लाभ उठाओ। क्यों? क्योंकि वो एक पल एक क्षण में आपको क्या मिलेगा, भक्ति संबंधित ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए भक्तों की संगत के द्वारा प्रचार बढ़ता है, भक्तों की संगत में रहकर हमारी अपनी भक्ति बढ़ती है। जैसे कि जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के पहले केंद्र की स्थापना की तो प्रभुपाद जी ने संडे कार्यक्रम की स्थापना की, संडे लव फीस्ट, जिसमें क्योंकि सारे हफ्ते लोग नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, तो प्रभुपाद जी ने संडे कार्यक्रम की स्थापना की जिसके द्वारा इतवार के दिन सब मंदिर आ सकते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, संगत प्राप्त करके आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। तो भक्तों का यही भाव रहता है, ये सोचा जाए किस प्रकार से हम दूसरों को अपनी संगत दे सकते हैं। अब शुद्ध भक्ति संगत हमें प्राप्त करनी चाहिए और शुद्ध भक्त जो संदेश है उसको अगर हम आगे पहुंचाएं यथारूप तो उस संदेश का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार आप देखते हो, हमने देखा है पिछले कई सालों में, कि एक नया भक्त जुड़ता है इस्कॉन संस्था के साथ, उसने सुना है भक्तों द्वारा कृष्ण भगवान परम भगवान है, हरे नाम माध्यम है, भगवद गीता सबको पढ़नी चाहिए, हालांकि वह आत्मज्ञानी नहीं है पर वो उसी संदेश को यथारूप आगे प्रस्तुत करता है और उसका क्या प्रभाव होता है, दूसरे व्यक्ति को वो प्रभावित कर देता है भक्ति के प्रति। तो जब हम शुद्ध भक्ति संगत की चर्चा करते हैं उसका ये अर्थ भी है कि शुद्ध भक्ति की जो वाणी है अगर आप उस वाणी को यथारूप आगे प्रस्तुत करोगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए यहां तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पहली बात प्रभुपाद जी ने स्थापित की है कि भगवान की कृपा के बिना कोई प्रचारक नहीं बन सकता, कृष्णा शक्ति बिना ना है तारा प्रवर्तना। और आप भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करते हो, अपनी पवित्रता के ऊपर। भक्ति सिद्धांत जी ने तो सारे शिष्यों को आदेश दिया था ले जाओ महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देश में, उन्होंने तो अपने सारे शिष्यों को आदेश दिया था प्रचार करने के लिए, पर प्रभुपाद जी ने गंभीरता से गुरु के आदेश को स्वीकार किया और प्रयास किया और भगवान ने सफलता दी। और तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा प्राप्त होती है आपके पवित्रता पर, यह निर्भर है। आप देखते हो आज के वातावरण में भी कई भक्त बड़े निम्रता से सेवा करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं, बड़ी अच्छे बड़ा अच्छा नतीजा प्राप्त करते हैं, कई और निम्रता से प्रचार नहीं कर पाते और प्रचार में आप देखते हो वो नतीजा भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज के वातावरण में भी आप ये देख सकते हो। और आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक हमें एक शुद्ध भक्ति संगत नहीं मिले जब तक आप भक्तियों की महिमा नहीं समझ सकोगे। तो ये जो मायावादी सन्यासी हैं ये बड़े सौभाग्यशाली थे कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु जी की संगत प्राप्त हुई और चैतन्य महाप्रभु जी की संगत के कारण सारे के सारे वैष्णव बने। फिर सारे वैष्णव कहाँ गए, बनारस की गलियों में जाकर उन्होंने हरि नाम संकीर्तन किया। अंदाजा लगाओ संकीर्तन हो रहा है सड़कों में, बनारस की सड़कों में 10,000 सन्यासियों के साथ सारे वैष्णव सारे मायावादी जो हैं ये क्या ये सन्यासी बन गए। तो प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो केवल वही चर्चा करता है जिसे दूसरा व्यक्ति कृष्ण भक्ति में जोड़ सके। और मायावादी सन्यासी जो हैं ये दावा करते हैं क्या कि वो भगवान है, पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं, हम हैं क्या जेवेर स्वरूपाय कृष्ण नित्यदास। तो शंकराचार्य ने एक अपनी व्याख्या दी है वेदांत सूत्र पर जिसका शरीर भाष्य, जिसमें ये स्वीकार ये स्थापित किया गया कि हम सब नारायण हैं। हमारा वैष्णव का सिद्धांत क्या है, अचिंत्य वेद वेद तत्व। और चैतन्य महाप्रभु जी ने सरल शब्द में क्या कहा है, जेरे स्वरूपाय कृष्ण नित्य दास, हम सदा भगवान के दास रहेंगे, ये सोचना कि हम भी नारायण बन सकते हैं ये एक अपराधी विचार है। ये सोचना कि क्योंकि भगवान हर जगह उपस्थित हैं इस कारण भगवान का रूप नहीं, ये भी गलत है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे सन डिस्क। सन डिस्क एक स्थान में है, हालांकि सूर्य का प्रभाव हर जगह है, तो ये नहीं आप कह सकते कि सन डिस्क कोई है नहीं। सन डिस्क सूर्य मंडल नहीं है, सूर्य मंडल एक स्थान में है हालांकि उसका प्रभाव हर जगह है। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया, साधारण स्थिति में अगर आप एक कागज लोगे उसके छोटे छोटे टुकड़े करोगे तो जो ओरिजिनल पेपर है वो समाप्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि परम भगवान हालांकि हरि के हृदय में विराजमान भी हैं परमात्मा के रूप में, जब भी उनका स्वरूप जो है रहता है। इसलिए कहा गया है नित्यो नित्यनाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम विदाति कामाम। हम नित्य हैं और भगवान भी नित्य हैं। तो आप कहोगे फिर क्या अंतर है, हम भी नित्य हैं आप भी नित्य हो तो हम भगवान हैं, है कि नहीं? तो अंतर क्या है? अंतर यह है वो एक नित्य जो है ही इज मेंटेनिंग ऑल अदर इटर्नल्स। वो एक परम भगवान जो है पूरी सृष्टि को संभाल रहे हैं, यह है अंतर। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि हम सबका असली कर्तव्य क्या है कि हम भगवान की सेवा में जुड़ कर रहे। तो यही विचार यहां स्थापित किया जा रहा है। इस तात्पर्य में भी प्रभु जी इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। और मायावादी इसकी इच्छा क्या थी कि वेदांत सूत्र की व्याख्या सुने। तो वेदांत सूत्र की असली व्याख्या किसमें प्राप्त होती है? श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र की रचना भी व्यासदेव जी ने की है। व्यासदेव जी सोच रहे थे क्या कारण है मेरी निराशा का, जबकि नारद मुनि जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि शुद्ध भक्ति का उन्होंने वर्णन नहीं किया। तो वेदांत सूत्र को अगर आप समझना चाहते हो, वैसे तो वेदांत सूत्र आरंभ होता है इस श्लोक के साथ अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, पर अगर आप वेदांत सूत्र के असली अर्थ समझना चाहते हो तो आपको श्रीमद् भागवतम को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और अगर आप श्रीमद् भागवतम को ध्यान से पढ़ोगे तो क्या समझोगे कि कृष्ण भक्ति ही सबसे आवश्यक कार्य है। कामस नेन्द्रिय प्रीति लभो जीवित यावद जीव से तत्व जिज्ञासा। हमें अन्य तिथि कार्य में नहीं जुड़ना चाहिए पर शुद्ध भक्ति के कार्य में जुड़ना चाहिए। स्वयं पुंसम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे हई तो क्या प्रतीयतिमा सुप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है क्या कि परो धर्मो करोगे बिना किसी रुकावट के तो ही आप असली शांति प्राप्त कर सकेंगे। तो आज के श्लोक में जो मायावादी हैं मायावादी सन्यासी महाप्रभु जी को कह रहे हैं कि हम आपके शब्दों से बड़े प्रसन्न हैं पर आप कृपा करके वेदांत सूत्र की व्याख्या दीजिए, वेदांत सूत्र पर अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। और वेदांत सूत्र का असली निर्णय क्या है कि हमें परम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसका? मुझे भी जाना है 5 मिनट में। एनी क्वेश्चंस? हाँ इस लेक्चर के ऊपर। हाँ
गिविंग इंस्ट्रक्शंस, हाँ आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसे हम एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते? व्हाई वी नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एट द टाइम?
प्रयास करो एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कहते हैं गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ, भगवान उनका सहयोग करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। तो आप प्रयास करो। भगवान गीता में कहते हैं हरे कृष्ण, भगवान गीता में कहते हैं कि जो प्रयास करते हैं मेरी सेवा करने के लिए अगर उनमें कुछ कमी भी हो तो उसको मैं दूर कर देता हूं। तो दूसरे शब्दों में हमारे में बेशक कमी भी हो पर अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान उसे आपको आपका सहयोग देंगे।
जैसे आप बता रहे थे कि हमें भक्तों में आपस में कृष्ण कथा की चर्चा करनी चाहिए, बट इट्स वेरी मतलब बहुत मतलब इट्स नॉट रेयरली रहता है कि डिवोटीज वी टॉक बिटवीन कृष्ण।
तो आपका कहना है कि वैसे आप शास्त्र में पढ़ते हो, प्रज्वलपद से बचो, कृष्ण कथा बढ़ाओ, तो रोज सुनोगे तो ये बात हृदय में बैठेगी। इसके लिए कहा गया है नस्तप्रयेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया, भगवत युतम श्लोके भक्ति भावती न सकी। हमें नियमित रूप से रोज भागवतम का ध्यान करना चाहिए या सुनना चाहिए। तो रोज सुनोगे तो ये बात हृदय में बैठेगी।
आपने कहा महाराज की क्या, आपने बोला लव मात्र साधु संग करना चाहिए, संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। तो साधु संग से क्या मतलब है महाराज, के साथ बैठे हैं तो संग हो गया या कुछ पूछे उनसे?
साधु संगत का असली अर्थ क्या? लव मात्र का मतलब है एक सेकंड का चौदवा हिस्सा, मतलब कि एक पल के लिए भी अगर आपको संगत मिले, मतलब यह है जब आप किसी साधु के संगत में हो तो सेवा का भाव होना चाहिए और सुनने का भाव होना चाहिए। सेवा का भी भाव महत्वपूर्ण है, सेवा भावना होनी चाहिए। और सुनो, जैसे कि साधु केवल वही विषय की चर्चा करता है जो कृष्णा से संबंधित हो, तो अगर आप उपदेश एक मिनट के लिए भी सुनोगे और इसका लाभ उठाओगे, उसका साथ में लाभ भी उठाना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा इस्कॉन में लोग कहते हैं कई बार, अगर आप रथ यात्रा में जाओगे तो फिर जो भी व्यक्ति रथ यात्रा में जाता है वही जीवन की समाप्ति में भगवान के धाम जाता है ना। तो एक बार किसी ने प्रभुपाद से यह प्रश्न पूछा कि ये सुना जाता है कि हम रथ यात्रा में भाग्य लेंगे, रथ यात्रा में जाएंगे तो जिंदगी की समाप्ति पर भगवान के धाम लौट सकते हो। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि बीमार व्यक्ति को हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्यों? इलाज करने के लिए, और वो इलाज करेगा तो ही स्वास्थ्य ठीक होगा। तो अगर आप रथ यात्रा उत्सव में जाओ, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन लो, उपदेश लो और फिर इसका पालन करोगे, फिर आप जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करके भगवान के धाम जाओगे। ये नहीं कि केवल आप रथ यात्रा में गए 10 मिनट के लिए तभी भगवान के धाम की टिकट आपकी तैयार हो गई। तो उसी प्रकार साधु संगत में हमें जो साधु के संदेश का निचोड़ है उसको स्वीकार करना चाहिए और उसका उपयोग करेंगे तो फिर हम भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। और जैसे हमने कहा था, अगर कुछ कमी भी हो, भगवान कहते हैं जो प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए, मैं कमी भी जो है दूर कर देता हूँ। जैसे आप देखते हो कई बार भक्त जुड़ते हैं कृष्ण भक्ति के साथ, जब उन्हें पहले कहा जाता है 4 नियम इत्यादि, तो कहते नहीं 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 यह संभव है, हम कहाँ कर पाएंगे 16 माला का जाप। पूरा प्रयास करते हैं, 1 माला 2 माला 3 माला, फिर हंसते हंसते भगवान शक्ति देते हैं कि 16 माला भी कर पाते हैं, नियमों का पालन भी कर पाते हैं, कि नहीं? ओके हाँ
How to manage improve the quality of hearing? What
so his question is, we hear so much about the importance of hearing. One thing is, everywhere it says, attentive hearing. We have a tendency to fall asleep while hearing. So that hearing has minimum value. Inka prashan ye tha, achha prashan ki log baar baar is vishay par bal diya jata ki hame sunna chahiye, shravanam, shravanam, shravanam. पर शास्त्र में कहा गया है सावधानी से श्रवणम करना चाहिए। जैसे कि कल शाम को मैं आपको समझा रहा था ये उपदेश रमित का 7वां श्लोक, जिसमें कि रूपक गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, ये सब मिश्री जैसे मीठे हैं, पर क्योंकि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है, हम भगवान के नामों का मीठापन महसूस नहीं कर पाते। तो फिर अगला प्रश्न यह है कि ये अविद्या की बीमारी दूर कैसे होगी? आपके जीभ में छाले हैं तो आपको कितना भी अच्छा भोजन दिया जाए आपको उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो अगला प्रश्न है कि छालों को दूर कैसे किया जाए? भौतिक छालों को आप दूर करते कोई ऑइंटमेंट या कोई पेस्ट लगाकर। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं ये अविद्या की बीमारी दूर होगी अगर आप ध्यान से सुनोगे भगवान के नामों का उच्चारण। वो ये नहीं कहते केवल सुनने से, कहते हैं ध्यान से सुनने से। इसी प्रकार वो जो भागवतम का श्लोक है प्रथम स्कंद का, नास्त परेश अभद्रेशु, इस श्लोक में भी कहा गया है ध्यान से सुनोगे। ये नहीं आप क्लास में बैठे हो सो रहे हो तो उसका वही प्रभाव पड़ेगा जैसे अगर आप सावधानी से सुन रहे हो, समझे ना। तो वी कॉन्स्टेंटली हैव टू कीप एंडेवरिंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर हियरिंग, ठीक है ना। यस लास्ट क्वेश्चन, आई वांट टू स्टॉप देन।
हरे कृष्ण महाराज जी, महाराज जी भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए दृढ़ता कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
क्या
भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए दृढ़ता डिटर्मिनेशन
हाँ
कैसे प्राप्त की जा सकती है?
रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में इस विषय की चर्चा करते हैं और रूप गोस्वामी जी ने समझाया है पहले हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा हो कि हम भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान आपको साधु संगत दिलाएंगे। साधु संगत प्राप्त होगी तो आपको शिक्षा मिलेगा। शिक्षा प्राप्त होगी कैसे भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हो, जैसे उदाहरण के लिए हरि नाम करो इत्यादि। और फिर जब आप भजन क्रिया करोगे फिर क्या प्राप्त होएगा? अनर्थ निवृत्ति। और आपके अनर्थ दिन पर दिन कम होते जाएंगे पर फिर भी आप भजन क्रिया करते जाओ फिर प्राप्त होएगा निष्ठा। फिर भी आप करते जाओ भजन भजन भजन, ये नहीं कि निष्ठा आ गई तो आप भजन बंद कर दो, फिर आपको रुचि प्राप्त होगी और अंत में कृष्ण प्रेम। तो असल में हर समस्या का हल, हर प्रश्न का उत्तर शास्त्र में प्राप्त होता है, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। तो निष्ठा की स्थिति पहुंचने के लिए हमें भजन क्रिया का पालन करना है और वैष्णव अपराधों से बचना है। चार प्रकार के अपराध हैं, जीवापराध, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, सेवा अपराध। इन अपराधों से बचकर अगर हम भक्ति का पालन करेंगे तो फिर ये निष्ठा आएगी। ओके ओके, हरे कृष्ण। Yeah.